आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। बांग्लादेश में कोटे के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज के तनाजुर में तकरीबन 1000 भारतीय तलबा वतन वापस आ गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके हम मंसद ने बामी इश्तराक को नई बुलंदी पर ले जाने के पुख्ता अज़्म को दोहराया है। थिम्पू में भारत भूटान तरक्याती इश्तराक मुजाकरात के दौरान तकरीबन 5000 करोड़ रुपए मालियत के 61 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई है। गुजरात के कई जिलों में तेज बारिश हुई है। पोरबंदर और देवभूमि द्वारका समेत कई जिलों में कल बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया गया है। खवातीन के T20 एशिया कप क्रिकेट में श्रीलंका के शहर दाम्बुला में थाईलैंड ने मलेशिया को 22 रन से हरा दिया। श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान मैच जारी है। और स्वीडिश ओपन टेनिस में मर्दों के सिंगल्स फाइनल में राफेल नडाल का मुकाबला नूनो बोर्गेस से होगा। अब खबरें तफसील से। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला जारी है और तकरीबन 1000 भारतीय तलबा वहां से वतन वापस आ गए हैं। वजारत खारजा के मुताबिक 778 भारतीय तलबा मुख्तलिफ जमीनी रास्तों से भारत वापस आ चुके हैं। इसके साथ साथ तकरीबन 200 तलबा ढाका और चिटागोंग हवाई अड्डों से मामूल की परवाजों के जरिए वतन वापस आए हैं। वजारत ने बताया कि ढाका में भारतीय हाई कमीशन और चिटागोंग, राजशाही, सिलहट और खुलना में असिस्टेंट हाई कमीशन्स भारतीय शहरियों की वापसी में मुआवनत कर रहे हैं। वजारत के मुताबिक हाई कमीशन और असिस्टेंट हाई कमीशन्स मुकामी हुक्काम के साथ तालमेल कायम करके सरहदी क्रॉसिंग प्वाइंट्स तक भारतीय शहरियों के महफूज सफर में सहूलत पैदा करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वजारत शहरी हवाबाजी, इमिग्रेशन, जमीनी रास्तों और बीएसएफ हुक्काम के साथ भी तालमेल के साथ काम कर रही है ताकि भारतीय शहरियों के लिए खुशुसलूबी के साथ सफर को यकीनी बनाया जा सके। ढाका में भारतीय हाई कमीशन और असिस्टेंट हाई कमीशन्स उन 4000 से ज्यादा भारतीय तलबा के साथ राब्ता कायम किए हुए हैं जो अब भी बांग्लादेश के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में हैं। वजारत ने बताया है कि दरखास्त किए जाने पर नेपाल और भूटान के तलबा की भी भारत आने में मुआवनत की गई है। बांग्लादेश में कोटे के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन और सिक्योरिटी दस्तों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पों में अब तक कम से कम 104 अफराद की मौत हो चुकी है जबकि 2500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। सरकारी मुलाजमतों में रिजर्वेशन का सिलसिला फिर से शुरू किए जाने के मामले पर वहां गुज़श्ता कई हफ्तों से बड़े पैमाने पर मुजाहरे हो रहे हैं। इंटरनेट करीब करीब पूरी तरह बंद हो जाने और टेलीफोन खिदमात में खलल पड़ जाने के सबब भारतीय तलबा अपने घर वालों से राबता कायम नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्हें आर्जी तौर पर बांग्लादेश से वापस आने पर मजबूर होना पड़ा है। उधर बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना ने मुल्क के मौजूदा हालात के तनाजुर में स्पेन और ब्राजील का अपना गैर की दौरा मंसूख कर दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज न्यूजीलैंड के अपने हम मनसब क्रिस्टोफर लक्सन से टेलीफोन पर बात की। बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने आइंदा वर्षों में बामी इश्तराक को नई बुलंदियों तक ले जाने के अपने पुख्ता अज़्म को दोहराया। दोनों मुल्कों के दरमियान हालिया अरसे में आला सतही राब्तों में तेजी को उजागर करते हुए उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में बामी मफाद के दोतरफा तआवुन को वसअत देने से इत्तफाक किया। इसमें तिजारत और इक्तिसादी तआवुन, मवेशी परवरी, अदवियात, तालीम और खला समेत दीगर शोबे शामिल हैं। वजीर आजम मोदी ने न्यूजीलैंड में भारतीय बिरादरी के मफादात का ख्याल रखने के लिए जनाब लक्सन का शुक्रिया अदा किया। जनाब लक्सन ने भी उनकी सलामती और खुशहाली के लिए कोशिशें जारी रखने की यकीन दहानी कराई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल शाम 7 बजे आलमी मीरास से मुतालिक कमेटी के 46वें इजलास का इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। भारत पहली मरतबा आलमी मीरास से मुतालिक कमेटी की मीटिंग की मेजबानी कर रहा है जो इस माह की 31 तारीख तक जारी रहेगी। इस कमेटी की साल में एक मरतबा मीटिंग होती है और इस पर आलमी मीरास से मुतालिक सभी मामला तय करने की जिम्मेदारी होती है और इसमें आलमी मीरास की फहरिस्त में शामिल किए जाने वाले मकामात का भी फैसला किया जाता है। इस मीटिंग के दौरान आलमी मीरास की फहरिस्त में नए मकामात को नामजद करने की तजावीज और मौजूदा 124 आलमी मीरास के हामिल मकामात के तहफ्फुज़ से मुतालिक रिपोर्टों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। 150 से ज्यादा मुल्कों के 2000 से ज्यादा आलमी और कौमी मंदूबीन इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। सरकार ने पार्लियामेंट के बजट इजलास से कबल कल सभी पार्टियों की मीटिंग तलब की है। सरकार पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के बिला रुकावट कामकाज को यकीनी बनाने के लिए सभी सियासी पार्टियों से तावुन की अपील करेगी। पार्लियामेंट का बजट इजलास पीर को शुरू हो रहा है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन मंगल के रोज 2024-25 का मरकजी बजट लोकसभा में पेश करेंगी। नरेंद्र मोदी सरकार की तीसरी मुद्दत के दौरान ये पहला बजट होगा। उम्मीद है कि सरकार पार्लियामेंट के बजट इजलास के दौरान 6 नए बिल पेश करेगी। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार ने पीएम स्वनिधि स्कीम शुरू होने के बाद से रेहड़ी पटरी वालों को तकरीबन 8,600 करोड़ रुपए के कर्जे तकसीम किए हैं। जनाब नड्डा ने आज नई दिल्ली में गजाई सामान फरोख्त करने वाले रेहड़ी पटरी वालों की तरबियत और बेदारी के प्रोग्राम में फूड सेफ्टी के लिए रहनुमा खतूत और पोर्टल का आगाज करने के बाद यह बात कही। इसका एहतमाम फूड सेफ्टी और मेयारात से मुतालिक भारत की अथॉरिटी FSSAI ने किया था। इस मौके पर जनाब नड्डा ने FSSAI को यह हिदायत दी कि गजाई सामान फरोख्त करने वाले रेहड़ी पटरी वालों के लिए 100 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस खत्म की जाए, जिससे रेहड़ी पटरी वालों की हौसला अफजाई होगी और ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा मिलेगा। वजीर सेहत ने इस बात को भी उजागर किया कि FSSAI अगले एक साल में गजाई सामान फरोख्त करने वाले 1,00,000 रेहड़ी पटरी वालों को तरबियत देगी। जनाब नड्डा ने यह भी कहा कि सभी रेहड़ी पटरी वालों को तेजी के साथ जांच के लिए इख्तराई किट फराहम की जानी चाहिए, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि पूरे मुल्क में गजाई सामान फरोख्त करने वाले रेहड़ी पटरी वाले महफूज खाना इस्तेमाल कर रहे हैं।
आप सबको सर्टिफिकेट मिलेगा और वह सर्टिफिकेशन आपके दुकान के लिए एक असरदार प्रमाण पत्र भी बनता है। उसके साथ सबको हम एक एक टेस्टिंग किट भी देंगे। तो इस तरीके से सशक्तिकरण करने का कार्यक्रम चलाया गया है। 2,16,000 से ज्यादा लोगों को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं।
ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिसरी और भूटान के उनके हम मनसब ओम पेमा चोरेन ने आज थिम्पू में तीसरे भारत भूटान तरक्याती तावन मुजाकरात की मुश्तरिका तौर पर सदारत की। मीटिंग के दौरान भूटान ने प्रोजेक्टों से वाबस्ता इमदाद की तजवीजों के साथ साथ 13वें 5 साल मनसूबे की मुद्दत के दौरान नाफिज किए जाने वाले प्रोजेक्टों की इमदाद की पहली किस्त भी जारी की। एक बयान में वजारत खारजा ने कहा है कि तरफेन ने मुख्तलिफ शोबों में 4,958 करोड़ रुपए मालियत के 61 प्रोजेक्टों को मंजूरी भी दी है। इन प्रोजेक्टों का ताल्लुक बुनियादी ढांचे, तवानाई, हुनरबंदी के फरोग, तालीम, सेहत, सकाफती विरसे, सलाहियत साजी, खेल, नौजवानों के राब्तों, डिजिटल मईशत और खलाई तकनीक से है। मुलाजमीन की प्रोविडेंट फंड तंजीम ईपीएफओ ने इस साल मई के महीने में 19.5 लाख अरकान को शामिल किया है। अप्रैल 2018 में पेरोल से मुतालिक पहले आदादोशुमार जारी किए जाने के बाद से यह इजाफा सबसे ज्यादा है। सालाना तजिये से पिछले साल मई महीने के मुकाबले इस साल 19.62% के इजाफे का इजहार होता है। रुकनियत में इस उछाल के मुख्तलिफ पहलू बताए गए हैं। इनमें रोजगार के बढ़ते हुए मौके, मुलाजमीन के फायदों के ताल्लुक से बढ़ती हुई बेदारी और ईपीएफओ के राबता प्रोग्रामों का मौसर होना शामिल है। आदादोशुमार से यह इशारा मिलता है कि इस साल मई के महीने के दौरान तकरीबन 9,85,000 नए अरकान ने अपना इंदराज कराया है। इस तरह अप्रैल महीने के मुकाबले इसमें 10.96% का इजाफा हुआ है, जबकि पिछले साल मई के महीने के मुकाबले 11.5% का इजाफा हुआ। गुजरात में आज सौराष्ट्र के साहली जिलों में तेज बारिश हुई। इनमें जूनागढ़, गिर सोमनाथ और देवभूमि द्वारका शामिल हैं। हमारे नामा निगार ने बताया कि मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने पोरबंदर में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। इधर भारतीय मौसमियात महकमे ने कल के लिए पोरबंदर, जूनागढ़, देवभूमि द्वारका, नवसारी और वलसाड़ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
जुनूब मगरबी मानसून के रियासत में मजीद आगे बढ़ने के साथ ही आज रियासत की 87 से ज्यादा तहसील में हल्की से शदीद बारिश हुई। द्वारका तहसील में तकरीबन 7 इंच बारिश हुई, जो रियासत में सबसे ज्यादा है। पिछले दो रोज से शदीद बारिश के सबब सौराष्ट्र खत्ते में कई बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरकजी वजीर मनसुख मांडविया आज सैलाब की सूरतहाल का जायजा लेने के लिए पोरबंदर पहुंचे। वजीर मौसूफ ने शहर के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा किया और जिला इंतजामिया के साथ एक जायजा मीटिंग की। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 4 रोज के दौरान रियासत में दूर दूर तक बारिश की पेशगोई की है। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अर्जुमंद अली खान।
بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے اگلے 5 روز کے دوران ملک کے مغربی، وسطی، مشرقی اور جنوبی جزیرہ نما خطے میں گرج چمک کے ساتھ دور دور تک ہلکی سے اوسط بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ آئندہ 2 دنوں میں شمال مغربی بھارت میں اتراکھنڈ میں کہیں کہیں بہت شدید بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ منگل اور بدھ کے روز مشرقی راجستھان میں، پیر اور منگل کے روز ہماچل پردیش میں اور پیر کے روز مغربی اتر پردیش میں کہیں کہیں بہت شدید بارش بھی ہو سکتی ہے۔ آئی ایم ڈی نے آئندہ 5 دنوں کے دوران ملک کے شمال مشرقی حصے میں گرج چمک کے ساتھ کہیں کہیں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ آج کیرلا کے ملاپورم ضلع میں ایک 14 سال کے لڑکے میں نپا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ کیرلا کی وزیر صحت وینا جارج نے کہا کہ پونے کے وائرس کا پتہ لگانے کے لیے قومی ادارے میں کیا گیا ٹیسٹ وائرس سے متاثر پایا گیا ہے۔ کیرلا کی 2 لیبارٹریوں میں کیے گئے ٹیسٹ بھی وائرس سے متاثر پائے گئے۔ اس لڑکے کا فی الحال کوزی کوٹ کے میڈیکل اسپتال میں علاج کیا جا رہا ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ ریاست کسی بھی صورتحال سے نپٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ جریدے سائنس ایڈوانسز میں شائع میڈیا کی وہ خبریں ناقص اور ناقابل قبول تخمینوں پر مبنی ہیں جس میں 2020 میں بھارت میں COVID-19 وبا کے دوران بہت زیادہ اموات ہونے کی بات کہی گئی ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے کہا ہے کہ جریدے کا مطالعہ غلط ہے اور مصنف نے جو طریقہ کار اپنایا ہے اس میں سنگین خامیاں ہیں۔ اس نے مزید کہا کہ اس میں شائع کیے گئے دعوے غیر واضح ہیں اور ان میں کوئی تسلسل نہیں ہے۔ وزارت نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ مطالعے کی دریافت اور COVID-19 کی اموات کے سلسلے کے درمیان اختلاف ہے جو اس کی معتبریت کو مزید کم کرتا ہے۔ شمالی چین میں شدید بارش کے سبب شاہراہ کے ایک پل کے گر جانے کے بعد کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سرکاری نیوز ایجنسی ژنہوا کے مطابق شانگسی صوبے میں یہ پل کل رات شدید بارش اور اچانک سیلاب کے سبب گر گیا۔ بچاؤ کاروائیاں جاری ہیں۔ آگ بجھانے کا عملہ کشتیوں اور ڈرون کے ساتھ بچاؤ کاروائی میں مصروف ہے۔ ہنگامی صورتحال میں بندوبست سے متعلق چین کی وزارت نے ایک ٹیم جائے حادثہ پر بھی بھیجی ہے۔ سرکاری نشریاتی ادارے CCTV نے کہا ہے کہ شاہراہ کے پل کے نیچے دریا میں گر جانے کے بعد تقریباً 20 گاڑیاں اور 30 سے زیادہ افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ رومانیہ کے شہر بخارسٹ میں آج بسارب اسٹیشن پر ایک ریل انجن اور مسافر ٹرین کے ٹکرانے سے کم از کم 15 افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ مقامی حکام کے مطابق آگ بجھانے والی 10 گاڑیوں اور تمام دستیاب طبی وسائل کو جائے حادثہ کے لیے روانہ کیا گیا ہے۔ رومانیہ کی ریلوے جانچ ایجنسی نے بتایا کہ وہ اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ خواتین کے T20 ایشیا کپ کرکٹ میں سری لنکا کے دامبولا میں بنگلہ دیش نے سری لنکا کے سامنے 112 رن کا نشانہ رکھا ہے اور سری لنکا نے اب سے کچھ دیر پہلے تک 10 اوورز میں 1 وکٹ کے نقصان پر 64 رن بنا لیے تھے۔ اس سے پہلے ٹاس جیت کر بلے بازی کرتے ہوئے بنگلہ دیش نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹ کے نقصان پر 111 رن بنائے۔ اس سے قبل آج شام اسی میدان پر کھیلے گئے میچ میں تھائی لینڈ نے ملیشیا کو 22 رن سے ہرا دیا۔ ملیشیا کو 134 رن کا نشانہ ملا تھا لیکن وہ 8 وکٹ کے نقصان پر 111 رن ہی بنا سکا۔ سویڈش اوپن ٹینس میں کل مردوں کے سنگلز فائنل میں رافیل نڈال کا مقابلہ نونو بورگس سے ہوگا۔ آج سویڈن کے شہر بوستا میں کھیلے گئے دوسرے سیمی فائنل میں 7ویں نمبر کے کھلاڑی پرتگال کے نونو بورگس نے ارجنٹینا کے تھیاگو آگسٹین تریانتے کو 6-3 اور 6-4 سے ہرا دیا۔ اس سے پہلے اسپین کے رافیل نڈال کروشیا کے دوجے آئیڈو کوویچ کو 6-4, 6-3 اور 6-4 سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گئے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ بنگلہ دیش میں کوٹے کے خلاف پرتشدد احتجاج کے تناظر میں تقریباً 1000 بھارتی طلبا وطن واپس آ گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور نیوزی لینڈ کے ان کے ہم منصب نے باہمی اشتراک کو نئی بلندی پر لے جانے کے پختہ عزم کو دہرایا ہے۔ تھمپو میں بھارت بھوٹان ترقیاتی اشتراک مذاکرات کے دوران تقریباً 5000 کروڑ روپے مالیت کے 61 پروجیکٹوں کو منظوری دی گئی ہے۔ گجرات کے کئی ضلعوں میں تیز بارش ہوئی۔ پوربندر اور دیو بھومی دوارکا سمیت کئی ضلعوں میں کل بہت شدید بارش کے امکان کے مدنظر ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ خواتین کے T20 ایشیا کپ کرکٹ میں سری لنکا کے شہر دامبولا میں تھائی لینڈ نے ملیشیا کو 22 رن سے ہرا دیا۔ سری لنکا اور بنگلہ دیش کے درمیان میچ جاری ہے اور سویڈش اوپن ٹینس میں مردوں کے سنگلز فائنل میں رافیل نڈال کا مقابلہ نونو بورگس سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔